गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे धाम। एक सौ बीसवीं गाथा अपन को शुरू करनी है। एक जवाब मैं 15 मिनट में इस गाथा को निपटाऊंगा, फिर इस गाथा पर मैं दोबारा व्याख्यान नहीं करूंगा, ज्यादा मह भी नहीं ऐसी बात। देखो तम माधुनि कोई सहाव समय बठ दो संसारे संसारो पुण क्रिया संसार मानस सदा बस स्वभाव से ही अवस्थित संसार में कोई ही संसरण करते। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं गाकर ज्यादा बोल नहीं सकता। इसे बता रहा था मैं पहले ये बोलता था ना वे वर्धमान महान जन विचरे हमारे ध्यान में, तो इसका चार पंक्ति बोलता था। वो चार पंक्ति कौन थी? जो राग देश विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में जिनके विराट विशाल निर्मल अचल की बल ज्ञान में युगपद विशद सकलार्थ जल के धुनत हो व्याख्यान में वे वर्धमान महान जिन विचरे। लेकिन मेरा चार लाइन में मेरा गला नहीं बोलता था, खींच नहीं पाता था उनको शुरू शुरू में, फिर थोड़ी देर में चल जाता है वो अलग बात है ना। तो इसलिए मैंने वो दो पंक्ति की, ये बोल रहा था ना अब दो पंक्ति होगी, इसलिए जानबूझ के दो पंक्ति की हैं। और उसमें एक पंक्ति तो वो ही है कि भाई वर्धमान महान जन इतने हमारे ध्यान में, और दूसरी क्या है? संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों में। ये भगवान महावीर की जो मैंने पूजन लिखी उसके जो अष्टक लिखी उसकी अचरी है ना। इसलिए वही मेरे लिए दिक्कत है कि मैं गा के नहीं बोल सकता, ये गाथा भी होती है, इसलिए मैं सामने विद्यार्थियों से पढ़वाता हूं, कभी तुम पढ़ो इसे तुम पढ़ो। देखो इसमें उन्होंने क्या कह रहे हैं कि वास्तव में कोई अवस्थित नहीं है, ये क्या कह रहे हैं? देखो स्वभाव से ही अवस्थित संसार में कोई नहीं। ये अवस्थित क्या है? अवस्थित माने एकदम कायम रहना, नष्ट नहीं होना, बदलना नहीं। अभी समझाया था पिछली गाथा में कि कथनचित अवस्थित है और कथनचित अनवस्थित है, माने कथनचित तो वैसा ही का वैसा रहता है द्रव्य की अपेक्षा, और कथनचित बदलता रहता है। अब ये वो उस पॉइंट को थोड़ा ढीला छोड़ रहे हैं, और इस गाथा में वो जो बदलता है उस पॉइंट पे ज्यादा वजन दे रहा है। क्या? क्योंकि स्वभाव से ही इस संसार में कोई भी अवस्थित नहीं है, है ना। तम्माद उन्नत्य कोई सहाव सम अठ दो जी संसारे, क्या संसार में कोई भी चीज अवस्थित नहीं है? अब ये क्या कह रहे है ही नहीं, मैंने सब बदलते रहते हैं, कोई भी चीज अवस्थित नहीं है, तो ये तो एकांत हो जाएगा ना। बोलो हेम जनी कोई घबराना नहीं, ये तो उसके संदर्भ में है। वो ये कह रहे कि सर्वथा क्या इसके संसार में कोई भी चीज स्वभाव से सर्वथा अवस्थित नहीं है, माने परिणमन भी उसका स्वभाव ही है। क्या हम क्या समझते हैं? परिणमन तो पर्याय है, तो पर्याय को तो दृष्टि के विषय में रखना नहीं है, तो स्वभाव पर दृष्टि रखनी है, और पर्याय तो वो तो स्वभाव है नहीं, वहां से पर्याय में से स्वभाव पना हमारा हट गया। अब वो कहते पर्याय स्वभाव है, अब माता कहना हमने उसको तो हटा दिया था। अब इस गाथा में कह रहे कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है। देखो अंतिम में पंक्ति पढ़ के सुनाता हूं, तो मैंने लिखी इसमें इस गाथा के सार। यद्यपि इस गाथा में यही कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु के समान भगवान आत्मा भी दिव्य दृष्टि से अवस्थित सदा एक रूप और पर्याय दृष्टि से अनवस्थित माने प्रति समय परिवर्तनशील है, तथापि यहां अवस्थित होने की अपेक्षा अनवस्थित होने पर अधिक वजन दिया गया है। माने ये दोनों बात भी बराबरी है, लेकिन इस गाथा की टोन ऐसी है कि इसमें अव्यवस्थित पने पर ज्यादा वजन दिया गया है। तात्पर्य यह है कि यहां पर्याय दृष्टि की मुख्यता से कथन किया गया है। गाथा में टीका में दोनों के प्रतिपादन में यही टोन है। क्या टोन है? सर्वम क्षणकम, सब चीज नित्य बदलती है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ये बात इसमें गाथा में बताई है। और उसी मुद्दे को इन्होंने मुख्य रूप से लिया है कि अनादि काल से लेकर अनंत काल तक कोई भी अपने सिद्ध भगवान तो फिर रहेंगे ना अनंत काल तक वैसे ही के वैसे। अब कहते कोई भी चीज हम प्राप्त कर लेंगे तो वो दूसरे समय रहेगी इसकी गारंटी नहीं है, तो हमको बहुत गड़बड़ लगता है कि हमारी मेहनत सब बेकार है, हम इकट्ठा करें और फिर गड़बड़ फिर खत्म। तो कहते हैं केवल ज्ञान हो जाएगा फिर तो खत्म नहीं होगा ना ज्ञान, केवल ज्ञानी से फिर बाद में कोई अज्ञानी तो नहीं होता। छायक समर्थन हो जाएगा तो फिर तो हमारा छायक समर्थन का नाश नहीं होगा, क्यों होगा क्या नहीं होगा बोलो। वे कह रहे हैं हर समय नाश होगा भाई, वो छायक सम्यक दर्शन हर समय नष्ट होगा, वो केवल ज्ञान हर समय नष्ट होगा, और फिर नया केवल ज्ञान होगा। तो ये जो वस्तु का परिणमन स्वभाव है हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि हमको तो जैसे हमने एक किया तो ऐसा हुआ, नहीं किया तो ऐसा किया, मैंने बोला तो बोलने में आया, नहीं तो नहीं आता। हमको उन्हीं बहुत कम बातें हैं जो हमको ऐसा लगता है, और उससे अनंत परिणमन ऐसे हैं कि जो तेरे ज्ञान का गेय ही नहीं बनते और निरंतर हो रहे हैं। जो कैसे बोलो, आत्मा में अनंत गुण है कि नहीं, और प्रति गुण में प्रति समय परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको क्या पता लगता है और आपने उनके लिए क्या कोशिश की सम्मदर्शन? मैं तो सम्मदर्शन प्राप्त करके ही जाऊंगा जैसा भी हो, मैं तो एक दफे सम्मदर्शन हो जाए तो मेरा सब काम हो जाए। तो तुझे सम्मदर्शन करना है? हाँ जी, सम्मदर्शन नहीं करना है, तो और तो कुछ नहीं चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं, मुझे तो संतोष है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो समझदार रुपया पैसा की बात कर रहे हैं बाल बच्चों की, फिर सम्यक ज्ञान चाहिए कि नहीं है? तो और क्यों होना चाहिए, क्यों कह देता है कि सम्यक चारित्र तो चाहिए कि नहीं, आत्मा का ध्यान की निरंतरता चाहिए कि नहीं है? अनंत काल तक मैं इसी तरह से आत्मा में स्थित रहूं, ये तेरे को चाहिए कि नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है कि वो इसमें निषेध तो उसका किया था कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा इन में से तेरे को कुछ नहीं चाहिए, इनकी मेरी को चाहेगी, इच्छा खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे सम्यक दर्शन हो गया कि सम्यक दर्शन जिनको हो जाता है छायक भी, उनको ये नहीं चाहिए, तुझे नहीं चाहिए होगा ये अलग बात है, लेकिन किसी को नहीं चाहिए ये बात कहां से ली? हर चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि था ना, और उसे चाहिए था ना, अगले चाहिए नहीं था, इस लेवल पर चाहिए था कि यदि तुम नहीं सौंपो अपना राज्य मुझे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, भाई का भी चक्र चला दिया, इस कीमत पर चाहिए था। नहीं नहीं, वो तो नियोग था, अभी तो नियोग होता है, क्यों बुद्धू बनाते हो? वस्तु का स्वरूप उनको विकल्प नहीं था, कुछ डाप का क्रोध पर्याय में आया नहीं था, ये अरेश भूमिका में आता है, घबराते क्यों? है? کیوں؟ نہیں نہیں بول میرا لڑکا ہے، میں کہہ رہا میں تو شادی کروں گا تو اسی سال کروں گا، اور اسی لڑکی سے کروں گا نہیں کروں گا، تو کیا ہو گیا؟ سب کو یاد ہے، وہ کہہ رہا بےچارا بس تیسری تو بات ہے، نہیں نہیں ایسا تو نہیں کہتا میں اسی لڑکی سے کروں گا، ارے سب کو پسند آتی ہیں، سب اپنے حساب سے سب کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کوئی نہیں کہتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ نہیں کہہ دیا، نہیں کہتا ہے تو بہت مہان ہو گیا، کہتا ہے تو بہت چھوٹا ہو گیا، تھوڑا سا جگت اسے اسبھیہ مانے گا، آپ سمجھے نا، اور اس کو کہے گا سبھی آدمی، لیکن استھتی تو وہی ہے نا، بس تو استھتی تو یہی ہے، ہاتھ میں رکھے آملے جیسی، اس میں کیا وکلپ کرنا، آپ نے مہاراج چکربتی معلوم، یہ جو جاتے ہیں نا یدھ کے لیے، تو ہر راجا پر آکرمن کرتے ہیں تو وہ ہار سویکار کر لیتا ہے، تو اس سے کچھ ٹیکس، ٹیکس مانے وہ بھینٹ بولتے ہیں اسے، وہ کہ وہ کچھ بھینٹ دیتا ہے، رتن وغیرہ جو بھی اچھی سمپتی انہیں بھینٹ دیتا ہے، اور اس کا مطلب اس نے ہار سویکار کر لی، اور پھر اس کی لڑکی لیتے ہیں، نہیں دے تو مانگ کے لیتے ہیں چکر دیتے ہیں، ابھی لاکھوں ہزاروں بیٹھے ہیں گھر میں، ہر راجا کی 32,000 مکٹ بدھ راجا ہوتے ہیں نا، تو ان میں 32 ان سب کی لڑکیوں سے شادی کر دے، جس میں کتنی ہوتی ہیں 32,000 رانیاں، تو ملچھ راجاؤں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، 96,000 رانیاں ہوتی ہیں نا، تو 32,000 ان میں ملچھ راجاؤں کی ہوتی ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ وہ ان کی پولیٹکس ہے، کیونکہ سب کو میں جیت رہا ہوں، اب اس کی میں دھن دھرتی ہر لی، جا کی دھن دھرتی ہری اور تائی نہ لیجیے سنگ، راجنیتی تو یہ کہتی ہے، جسے میں نے سب کچھ چھین لیا اور پھر اپنا نوکر بنا لیا اور کہہ دیا تم ہی سنبھالو آج سے ہماری طرف سے، اور چھوٹا سا ٹیکس ہمارے مین اس میں کیندر میں دے دینا، باقی تم کماؤ آرام سے، ویسے ہی رات چلاؤ، تم ہم نے غلام بنا لیا نا سب کچھ، آپ کی سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو وہ شترو ہے واستو میں، تو جس کے ساتھ آپ نے زبردستی یہ کیا ہے وہ شترو ہے، کیوں زبردستی کیوں کیا؟ ہر آدمی اپنی لڑکی خوشی خوشی دے گا نا، جس کے گھر میں 96,000 پہلے بیٹھی ہیں اس کو اپنی لڑکی کوئی خوشی خوشی دے گا؟ 3 عورتیں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں اور وہ کہ تمہاری لڑکی کو مانگے تم دو گے؟ ارے ان لڑکیوں کو یہ معلوم پڑ جاتا کہ یہ لڑکا کسی دوسری سے پریم کرتا تھا، کرتا ہے نہیں، تو ہی ریجیکٹ کر دیتی، جا تیرے سے بھی بات کرتا، کرتے تھی کبھی کرتے تھی، معنی ان کے پرتی دوسری پتنی کا ہونا کتنی ان مہیلاؤں کو کتنا اروچی پورن ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے نیچر معلوم پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ پر اب وہ کوئی کیوں چاہے گا؟ تو وہ کیوں کہ کوئی بھی آدمی اپنے جمائی کو مار کر اپنی لڑکی کو بدھوا نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ ان سے مجھے جان کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے بڑھو، اس لیے اب چوتھے گنسان میں یہ ہوتا ہے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ارے کتنے ہی کچھ نہیں چاہیے کہا ہو تو جانی تو جانتے ہیں کہ شہنکا میں کیا استھتی ہوتی ہے، تو اس کا ورنن کرتے ہیں تو آپ بہت بیراگی لگتے ہو خود کو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور بے اس بات کا ورنن کرتے ہیں تو یہ لگتے ہیں کہ یہ تو راگی ہے، یہ تو یہ کہہ رہے خوب کرو، ایسا کہاں کہہ رہے، ہم تو وستو کی استھتی کیا ہوتی ہے چوتھے گنستان میں انتانوندی کسائے جاتی ہے تو بھی اس میں اتنا راگ رہ سکتا ہے، وہ سب راگ اپرتیاخانا برن کا راگ ہے، پرتیاخانا برن کا راگ ہے، وہ چیزیں تو تب چھوٹیں گی جب وہ پرتیاخانا برن کسائے اور اپرتیاخانا برن کسائے چھوٹے، ہے نا؟ دیکھو آچار امبر چند کی ٹیکا پڑھتا ہوں، بہت چھوٹی سی ہے، 4-6 لائن کی ہے، سنسکرت میں تو 3 ہی لائنیں ہوں گی، وستتا جیو دربیہ پنے سے اوستھت ہونے پر بھی پریایوں سے انوستھت ہے، اس سے پرتیت ہوتا ہے کہ سنسار میں کوئی بھی سوبھاؤ سے اوستھت نہیں ہے، دیکھو مول گاتھا میں صرف اتنا لکھا कि संसार में स्वभाव से कोई अवस्थित नहीं, जबकि वो अवस्थित है। नीचे टीका में वो अर्थ खोल रहे, तात्पर्य यह है कि किसी भी द्रव्य का स्वभाव अकेला एक रूप रहने का ही नहीं है। जो क्या इसमें एक रूप रहने का नहीं है, नहीं ये ही निकाल दो तो अर्थ उल्टा हो जाएगा। एक रूप रहने का नहीं, एक रूप रहने का ही नहीं है। वो कहते आप आओगे तो आपको हमारी दुकान पे ये माल मिलेगा, है ना? अब हम ले जाएंगे तो और किसी को तो नहीं दोगे आप? क्या बात कर रहा है? आपको मिलेगा, बस आपको ही मिलेगा। ये मैं कहां कह रहा हूं? फिर तो हमारे गांव में दूसरा ले जाएगा पड़ोसी, तो हमारा कैसे बिकेगा? ये नहीं चलेगा। आप समझिए ना, आपको ही मिलेगा। अब ये एजेंसी, एजेंसी में क्या देते हैं बोलो? लाखों रुपया लेते ना आपसे, अब करोड़ों लेते होंगे आप बड़े बड़े लोगों से हैं देने के। बस ये ही तो देते हैं, और क्या देते हैं? ये माल आप ही बेचोगे और कोई दूसरा नहीं बेचेगा। क्यों? और फिर आप भी बेचोगे और सारी दुनिया बेचेगी, तो ये कहीं सर है कि नहीं? तो वो ये कहते हैं कि भले ही मूल गाथा में ऐसा लिखा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसका अर्थ ये है कि अकेला अवस्थित ही नहीं है। ऐसे बहुत आते हैं राजभारती में, तो बड़ी बहस की है इस बात पर कि तुमने ऐसा कह दिया, ऐसा अर्थ कैसे कर दिया। जैसे ये कहता है तीत पद्म शुक्ल द्वि त्रि शेषेषु, है क्या अर्थ है इसका? तत्वासूत्र की है, आपने रामजी भाई का तत्वासूत्र पढ़ा है सब लोगों ने। इस सूत्र का क्या अर्थ है? स्वर्ग तो है, तीत पद्म शुक्ल द्वि त्रि शेषेषु, द्वि माने दो युगल, दो युगल माने चार स्वर्ग, चार स्वर्ग में पीत लेस्या होती है, पीत पद्म, और उसके बाद तीन युगल में माने उसके बाद छह युगलों में, छह स्वर्गों में माने पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां दसवां, इनमें पद्म लेस्या होती है। और शेषेषु बाकी के बचे चार, चार बजे छह बजे जो, उनमें पद्म शुक्ल लेस्या होती है। इसका अर्थ है। अब राजवार्तिक में सर्वासिद्धि में अर्थ किया कि शुरू पहले दूसरे में पीतलस्य, दूसरे तीसरे चौथे में पीत पद्म, ऐसी मिला मिला करके ऐसा अर्थ किया। तो उन्होंने कहा कि तुम तो अर्थ गलत कर रहे हो, उसमें तो सूत्र जी में तो ऐसा क्लियर ऐसा लिखा, तुम बीच में ऐसा क्यों जोड़ रहे? तो उन्होंने कहा अन्य शास्त्रों में ऐसा लिखा, सुनो अन्य शास्त्रों में ऐसा लिखा, तो तुम तत्वासूत्र की टीका कर रहे हो क्या अन्य शास्त्रों की कर रहे? क्या कि भैया हम अनुवाद नहीं कर रहे, हम टीका कर रहे हैं, उसमें जहां जैसा लिखा हो उसको स्पष्ट करना हमारी ड्यूटी है। तो फिर किसको सच्ची माने? वो सूत्र जी में लिखी है वो सच्ची माने कि तुम बता रहे? तो कि हम बता रहे। क्या कह रहे? तुम बता रहे वो सच्ची माने? कि हाँ। क्यों? फिर इसका जवाब दिया, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवे, निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खर विषाण मत। इसी पे तो झगड़ा हुआ था सोनगढ़ में, जब मुझे चांस मिला पूज्य गुरुदेव श्री की उपस्थिति में रामजी भाई की क्लास चलाने का, तो मैं ये पढ़ा रहा था, गुरुदेव श्री भी बिराजे थे, तो उसमें मैंने ये बात आई क्या, तो बहुत हल्ला गुल्ला हो गया, ये ऐसा कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। तो मैं तो क्यों, तुम्हारी समझ नहीं आया हो कुछ, पांच मिनट लगेंगे है समझ, समझाऊ? देखो सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, इसका क्या अर्थ है कि किसी चीज को सामान्य तरीके से बताओ तो अपन ने ऐसी कह दी कि बस ठीक है आएंगे आएंगे, फिर विशेष तरीके से हम इतने बजे इस गाड़ी से इस तरह से आपके यहां पहुंचेंगे, ये विशेष कथन हो गया, और ये कहां आएंगे ये सामान्य कथन हो गया। तो इसमें बलवान कौन है? सामान्य से विशेष बलवान है ना, क्योंकि वो डिटेल बताता है। तो उसमें लिखा सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेष वो बलवान भवे, अब सामान्य बोलते हैं त्रिकाली ध्रुव को और विशेष बोलते हैं पर्याय को। अब इनने तो यही रटा था क्या, तो क्या देखो ये कह रहे कि सामान्य से त्रिकाली ध्रुव से विशेष मानो पर्याय बलवान है। डॉक्टर साहब ऐसा कहते, डॉक्टर साहब ऐसा कहते, और गुरुदेव को गिरा गिरा के भरा बनाया। अब गुरुदेव के मैं भी बैठा था भाई, मैं भी बैठा था, लेकिन मैं ध्यान तो मुझे तो नहीं आया ले जाए। फिर मुझे बुलाया गुरुदेव ने कि ये क्या बात है। फिर मैंने बताया कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने कोट किया है और ये शास्त्र प्रणयत्नमाला में है, उसमें है कि सामान्य कथन से विशेष कथन बलवान होता है, और आगे की पंक्ति में तो और गजब है, निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। जिस सामान्य में विशेष नहीं हो वो सामान्य गधे के सींग के समान होता है। क्या कह रहे हैं मालूम आपको, कि जिस द्रव्य में पर्याय नहीं हो वो द्रव्य जैसे गधे का सींग लोक में नहीं है, वो द्रव्य भी है ही नहीं लोक में। बोलो ये अर्थ है, आपकी समझ में आया कुछ के नहीं, क्या करें भैया। और किसको बताएं, ये हमारे पांच जो विद्यार्थी हैं इनको सबको आएगा, ये पीयूष को खड़ा करो ये बताएगा, इसको खड़ा करो, संजय को खड़ा करो, बैठे हैं पांच सात विद्यार्थी मेरे। मैं जब ज्यादा को जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं, दो चार को पहचानता हूं ज्यादा, लेकिन सब सब बताएंगे जी, ये तो पढ़े हैं उसमें, क्या समझे। निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खर विषाण, विशेषों के बिना का सामान्य गधे के सींग के समान होता है, माने बिना पर्याय का द्रव्य कभी होता ही नहीं। तो फिर वो दृष्टि के विषय में क्या है, अरे उसे तो पर्याय को गौण करना है, गौण करना है माने दृष्टि से ओझल करना है, हैं? आप समझे ना, उसको मुख्य नहीं रखना है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो गौण गुरुदेव बोलेंगे गौण करने के अर्थ में है, गौण करने के अर्थ में है ये बात जो कही है, निषेध किया है वो गौण करने के अर्थ में है। लोक में कोई भी वस्तु अवस्थित नहीं है, ये गाथा में लिखा, तम्मादुनत्त कोई स्वभाव समय बट्ठ दोति संसारे, इस संसार में कोई भी वस्तु स्वभाव से अनवस्थित नहीं है, मैंने सब अवस्थित नहीं है। संसारोपण क्रिया, क्योंकि संसार संसार मानस दब्बस है, द्रव्य के परिणमन को ही संसार कहते हैं। अरे क्या कह रहे, अब अंदर आज द्रव्य का जो परिणमन हो रहा, संसरण, संसरण माने घूमना चलना, एकदम लगातार चलते रहना चलते रहना, जैसे मैंने कल कहा था ना कि बहते के नाम, बहते पानी का नाम नदी है, पानी का नाम नदी नहीं है। तो संसरण माने बहता हुआ, पर्याय निरंतर बदलती रहे, ऐसे द्रव्य का नाम वस्तु, वस्तु द्रव्य है ना, संसार है। देखो क्योंकि वह मनुष्यादि पर्यायात्मक वह स्वरूप से ही वैसा है, उसमें परिणमन करते हुए द्रव्य की पूर्वोत्तर दशा से त्याग ग्रहण रूप क्रिया का नाम ही संसार है, यही संसार का स्वरूप है। ये अमरचंद की टीका है, जयसेन का भी है। अभी देख पंडित वृंदावन लाल जी ने पद्यानुवाद किया, जी दो छंद उनके हैं, तो एक पंडित देवीदास जी ने पद्यानुवाद किया, एक छंद उनका है, फिर एक गुरुदेव का कोटेशन है, पढ़ूं। आत्मा का शुद्ध स्वभाव तो ज्ञानानंद है, इस स्वभाव को भूलकर अपनी पर्याय में विकारी भाव करता है वह संसार है, बस स्त्री कुटुंब आदि संसार नहीं है। अब ये इस मूल में नहीं है और गुरुदेव का है, ये पंक्ति गुरुदेव की, अब मूल में तो नहीं है, मूल में तो नहीं, लेकिन है ना वस्तु स्वरूप ऐसा, यानी हम सारी दुनिया संसार का है को स्त्री पुत्र कुटुंब आदि को संसार बोलते क्या नहीं चलते, गुरुदेव खुद बोलते थे। मैंने एक दफे कहा था उनसे, जब हम संसार में थे ना तब ऐसा करते थे, तो मैंने कहा अभी मोक्ष में हो क्या, मैं अभी क्या हुआ, अभी कहा इसमें लिखा है पढ़ना कि चौदहवें गुणस्थान तक संसार है, इसी गाथा मैंने पढ़ा इसको पूरा पूरा घर पे, अब इधर मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा, समझे। इसमें लिखा है कि 14वें गुण स्थान तक संसार है। बोलो, अरहंत तो 14वें गुण स्थान तक के जीव हैं, अरहंत हैं वे सब संसारी जीव हैं। हमको संसारी जीव का मतलब यही दिखते हैं, क्योंकि वो संसरण कर रहे हैं, संसरण करते हुए जीव को संसार कर दे। तो ये कह रहे हैं कि यहां पर वो उसके परिवर्तनशीलता को पे ही भजन दिया है। इस गाथा में जो है वो परिवर्तनशीलता, उसको ही वस्तु का स्वरूप बताया है और अवस्थितपने को इतना गौण किया है कि आप हमको निषेध जैसा लगता है। तो गाथा में तो निषेध ही है, फिर वो टीका में उनने ये बात बताई है। अब टीका को तुमने क्यों बताई, तुम गलती करेंगे, नहीं हम टीकाकार हैं। क्यों साहब, हमने लिखी ना समयसार की टीका, तो आप टीका क्यों कहते हो, इसे अनुवाद कहो ना, किसका अनुवाद है, टीका है ना। उसमें बहुत सी बातें हमने ऐसी लिखी ना जो यहां यहां में नहीं है, वहां नहीं है, यहां से वहां से सब बताई है, कोई बात सिद्ध की है उसका स्पष्टीकरण किया है, खोला। अनुवाद में ये नहीं होता है, अनुवाद में तो मक्खी की मक्खी मार दूंगी जैसा उसने देखा है, हमने ऐसा नहीं किया है। तो आपने उसको देखा नहीं, अरे 100 दफे देखा है, देखना और देख कर लिखना इन दोनों में बहुत फर्क है। एक तो ऐसी किताब सामने रख ली और एक एक अक्षर लेन देख देख करके और यहां लिख दिया, और एक हमने शांति से 1 घंटे तक खूब पढ़ा, अच्छी तरह से देखा और फिर किताब रख दी और फिर लिख दिया। तो ऐसा तो हम परीक्षा में भी करते ना, परीक्षा में वो किताबें जिसकी हम परीक्षा दे रहे हैं, 1 मिनट तक जब तक कॉपी हमें नहीं मिली है, पेपर नहीं मिला है, पूरा देखते हैं। कितने दिन देखते हैं, साल भर तक गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी समझाते हैं। पर इतनी सी बात है कि जब तुम पेपर में लिखो तब उस वक्त नहीं देखो, इतनी सी बात है ना। लिखा हमने सब है, फिर हमने लिखा अपना है, इसलिए हमारी ये ठीक है। ऐसा आंख मीच के नहीं लिख दिया है, ऐसी नकल नहीं मार दी है। जहां हमको अब अर्थ तो वैसा ही है, तो उसका अर्थ जो जिसका होगा वो वैसा ही होगा ना, जिस सूत्र का जो अर्थ है तो वही होगा ना। अर्पिता नरपित सिद्धे, इस सूत्र का अर्थ रामजी भाई जैसा लिखेंगे मैं उससे उल्टा लिखूंगा, और नहीं तो मैं उन्हें गलती हो जाऊंगा। आप समझिए ना, मैं वो गंभीरता से मैं अपने तरीके से स्पष्ट करूंगा, आपकी समझ में आ जाएगी। मान लो आपने रामजी भाई की टीका पढ़ी और आपकी समझ में आ गई और मेरी से समझ में नहीं आई, तो आप उसको अच्छा समझेंगे, और यदि उनकी पढ़ी और समझ में नहीं आई और मेरी पढ़ने से समझ में आ गई तो आप मुझसे लाभ लो, जिसको जिससे लाभ लेना है लेने दो ना, इसमें क्या तकलीफ है ना। आप किसी दुकान मना कर सकते हो, अब चश्मा कोई और कोई नहीं बेचेगा, वैसा गले मोटा नहीं बेचेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा सारा बाजार खुला हुआ है, ऐसा जुर्मानी भी खुली हुई है। प्रत्येक व्यक्ति खूब गहराई से अध्ययन करे, पढ़े लिखे बोले, जो भी संभव उससे है वो करे। ख्याल में आई ना, जुर्मानी की सेवा जैसे संभव हो वैसे करे।